نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 سے لے کر اور انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے آیت 73 تک. اللہ تعالی ہمیں آج کی آیات سیکھنی سمجھنی اور ان پر عمل کرنے کو آسان فرما دے. اس سے پہلے کہ ہم آگے تفسیر دیکھیں کچھ باتیں پچھلے سبق میں سے کرنی ضروری ہیں. ایک یہ پہلی بات آیت نمبر 53 سے جہاں پہ یہ ہے کہ آپ دعوت کے بغیر کہیں نہ جائیں, جب تک دعوت نہ دی جائے کھانے کی اس وقت تک نہیں جا سکتے. اس میں ایک پوائنٹ اور بھی یہ ہے کہ دیکھیں, جب ہمیں کسی کے گھر سے دعوت آتی ہے کھانے کی آئے, شادی کی آئے, کسی بھی اوکیزن کی آئے, تو جتنے افراد کو بلایا گیا ہو اتنے کو ہی لے کے جایا جائے. یہ نہیں کہ میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے, چلو بھائی تم بھی چلو, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, اسے کیا فرق پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا اگر, تو پہلے میزبان سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ کیا میں اس کو لے کر آ سکتا ہوں, اور وہ لوگ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوتے تھے, کہہ دیتے تھے اگر لا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں لا سکتے تو انکار کر دیتے تھے, لیکن بلا اجازت نہیں کسی کو لے کر جاتے تھے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. بعض لوگ ہمارے ملکوں میں شادیوں میں بلا اجازت ایسے بس کپڑے پہن کے اچھے اور شادیوں میں گھس جاتے, کھانا پینا کھا کے اور نکل جاتے, کہ دولہا والے سمجھتے ہیں دلہن کی طرف سے ہیں, دلہن والے سمجھتے ہیں دولہا کی طرف سے ہیں, تو کوئی بھی ان کو کچھ نہیں کہتا, کھایا پیا اور نکل گئے. تو جب تک یہ پھر حرام ہو جاتا ہے, جب تک اجازت نہ دی جائے. دیکھیں یہاں پہ صاف الفاظ میں ہے نا, لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی الطعام. تو نبی کے گھر کی ہی صرف بات نہیں ہے کہ کسی گھر میں بھی بغیر کھانے کی اگر اجازت نہیں ہے لی ہوئی, دعوت نہیں آپ کو دی گئی ہے, تو اس طرح گھس جانا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, نمبر ٹو بات یہاں پہ ہم نے دیکھا ایک اور چیز, آیت نمبر 52 میں ہی دیکھیں, الا ما ملکت یمینک, مگر جو آپ کے دائیں ہاتھ کے انڈر ہیں. اور دوسرا یہ ہم نے آیت نمبر 50 میں بھی دیکھا کہ وما ملکت یمینک. ٹھیک ہے, تو یہ ہیں لونڈیاں مراد اس سے. اب لونڈیاں کیا آج کے دور میں بھی موجود ہیں؟ کیا آج کوئی اپنی نوکرانیوں کو لونڈی سمجھ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں ایک بیوی ہے اور باقی میں نے دو تین لونڈیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, یہ میری لونڈیاں, ان سے میں اپنا تعلق بھی کر سکتا ہوں کیونکہ اسلام میں تو ایسا ہے. یاد رکھیے کہ جو آج کی نوکرانیاں ہیں یہ آزاد عورتیں ہیں, یہ لونڈیاں نہیں ہیں. آج کے دور میں لونڈی ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے. کیونکہ لونڈی کس طرح سے ہوتی ہے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. دیکھیں دو طرح سے اس زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں. ایک تو یہ لوگ لوٹ مار کرتے تھے, جو آزاد عورتیں ہوتی تھیں, بچے ہوتے تھے ان کو پکڑ لیتے تھے, کوئی قافلہ جا رہا ہے یا کچھ ہے, ڈاکہ ڈالا, ان کا مال لوٹ دیا, عورتوں بچوں کو سلیو بنا کے اور پھر منڈی میں بیچ دیا, جیسے حضرت زید کو بیچا گیا تھا. ایک یہ طریقہ ہوتا تھا. دوسرا جنگوں میں عورتیں قید کی جاتی تھیں اور وہ لونڈیاں بنائی جاتی تھیں. اب دیکھیں کہ اسلام نے اس چیز کو تو حرام کر دیا کہ کوئی آزاد انسان جو ہے اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا, تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا کہ کوئی ڈاکہ ڈالا اور کوئی عورت پکڑ لی, کوئی بچہ پکڑ لیا اور ان کو بیچ کے اور پھر بنا دیا, تو وہ تو بالکل ختم ہو گیا. نمبر ٹو ایک اور طریقہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جنگ میں وہ عورتیں جو جنگ میں حصہ لیتی ہیں ان کو جب قید کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو خلیفہ وقت ہوگا, ایسے نہیں کہ خود ہی سے لوگ کریں, صحیح پراپر واقعی اللہ کے دین کی خاطر جہاد ہو رہا ہو, قتال ہو رہا اور اس کے اندر کوئی عورتیں پکڑی جائیں, پھر امیر جو ہے وہ ان کو مال غنیمت جیسے تقسیم ہوتا ہے اسی طرح ان عورتوں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے اور وہ پھر لونڈیاں بنا کرتی تھیں. تو یہ دوسرا طریقہ. اب آج کے دور میں نہ تو ایسی کوئی جنگ ہو رہی ہے, نہ ایسے کوئی خلافت ہے, نہ ایسی کوئی امیر, نہ ایسی کوئی مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا ہے. ہاں قیامت تک کے زمانے میں اگر کبھی کوئی ایسا وقت آتا ہے جس میں ایسا ہوتا ہے تو پھر ہاں ہو سکتی ہیں, لیکن جو آج کا دور ہے اس کے اندر کوئی بھی انسان یہ دعویٰ کر کے کسی عورت کو پر دسترازی نہیں کر سکتا کہ کہے کہ نہیں جی یہ بھی لونڈی ہے اور لونڈیوں کا تو ہمیں اجازت دی گئی. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی. اچھا تیسری بات آگے آئیے, یہاں پہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کے اوپر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے درود کی ضرورت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کی پہلے سے رحمتیں ہیں, پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر ایک چیز سے پاک کیا ہوا ہے, وہ ان کے لیے پہلے سے ہی مغفرت ہے, پھر ہم کیوں درود پڑھتے ہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود رحمت للعالمین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ رحمتیں ہیں. تو بات ایک تو بات یہ سمجھ لیں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے, یہ دعا ہے نا, درود کیا ہے, ایک دعا ہے. ٹھیک ہے, جب دعا مانگی جاتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو پھر آپ مانگ رہے ہیں. بعض دفعہ اس لیے بھی مانگی جاتی ہے, مثلاً ہے کہ آپ کسی کوئی بہت مالدار سیٹھ ہے, اس کو کوئی دعا دیتا ہے کہ اللہ تیرے تجھے مالدار کرے, تجھے اور مالدار کرے, تیرے اوپر مال کی برسات کرے تجھے یہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کیا کہ امیر آدمی جو سیٹھ آدمی ہے میری اس دعا سے خوش ہو کے مجھے کچھ عنایت کر دے. ٹھیک, ایک تو وجہ یہ ہوتی, دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دوام کے لیے کہ ہمیشہ تیری یہ دولت قائم دائم رہے. اس وجہ سے تو ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ضرورت نہیں, جن کے اوپر فرشتے درود بھیج رہے ہوں ان کو کیا ضرورت ہے, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا رہا ہو ان کو کیا ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں جب ہم یہ درود پڑھتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کبھی اتار ہی نہیں سکتے جو ان کا احسان ہمارے اوپر, کبھی نہیں اتار سکتے ان کا احسان. تو اب مطلب بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے, مگر ہم ان کے لیے دعا کر کے نہ کچھ اپنی طرف سے ایک, میں بدلہ نہیں اس کو کہوں گی لیکن کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کچھ کچھ کچھ. ہم اپنی طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اب ہم دعا ہی دے سکتے ہیں, تو اب ہم ایک دعا دے رہے ہیں, تو یہ ان کے احسان کے بدلے کے اندر ہم ان کا احسان مانتے ہوئے ہم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اور دعائیں کریں, اور دعائیں کریں ان کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا نا ہمیں کہ ہم درود بھیجیں, تو اس لیے ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ درود پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تو رحمتیں ہیں ہی ہیں, اللہ اس بات سے خوش ہو کے ہمارے پر بھی اپنی رحمتیں اپنا کرم کر دیں. ٹھیک ہے, اسی لیے تو پھر درود کافی ہو جاتا ہے نا انسان کے سارے غموں کے لیے, ان کے لیے سب کے لیے درود کافی ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ ورنہ ہمارے درود پڑھنے سے کوئی ان کے جتنے درجے ہیں اس سے اوپر نہیں چلے جانا, ان کا تو آلریڈی ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام وسیلہ عطا فرمانا ہے, مقام محمود عطا فرمانا ہے. تو ہمارے کہنے سے نہیں ہے, وہ تو پہلے سب سے اوپر ایک جو مقام ہے وسیلہ کا وہ ان کو ملنا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ نہیں ہے ہمارا کوئی احسان کہ ہم بڑے درود پڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. نہیں, ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ نے تو خود فرما دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا, اب اور ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اپنی اس کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں آخر کوئی کسی بادشاہ اس کو کچھ عنایت کرتا ہے تو وہ بادشاہ کو شکریہ کرتا ہے, بادشاہ کو اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ کیا دے سکتا ہے, یہ ایک فقیر ہے. تو اب وہ شکریہ ادا کرتا ہے, صرف ایسے گریٹیچیوڈ ہے کہ اتنا شو کرتا ہے کہ میں اس آپ کے احسان کو مانتا ہوں. اسی طرح ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مان رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا. तो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, यानी उनको ये शो करना चाहते हैं कि मैं आपके एहसान को मानती हूं, तो उसके लिए जितना ज्यादा दुरूद पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। तीसरी बात, ये कहना हराम है कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है अपने नबी पे, ये नहीं। मैंने आपको बताया था जब अल्लाह की तरफ निस्बत की जाती है सलात की, तो मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी के बैठ के अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये नहीं इस तरह से है। बल्कि मैंने आपको साफ मीनिंग बताया कि सबके लिए मीनिंग डिफरेंट है, उसको समझें कि क्या मीनिंग है। ये बात अगर कभी मुंह से निकली हो कि वो तो अल्लाह दुरूद पढ़ता है तो हम क्यों ना पढ़े, ये तो कितनी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, क्या क्या नहीं किसी के मुंह से जब ये, और वाकई सुना हुआ है कि इस तरह से लोग बात करते हैं तो समझ ही नहीं है कि क्या कह रहे हैं। ये होती है कि जब इंसान को इल्म नहीं होता ना, तो फिर वो ऐसी बात, सलात का मतलब क्या है ये तो समझो, जब अल्लाह ताला के लिए कहोगे तो डिफरेंट होगा। जैसे हम तौबा का आप देख रहे हैं, अल्लाह के लिए कहेंगे तो डिफरेंट बात है, लोगों के लिए कहेंगे तो डिफरेंट बात होगी। इसी तरह जब हम सलात का लफ्ज अल्लाह ताला के लिए कहते हैं, तो हरगिज ये ना समझे कि जैसे हम दुरूद पढ़ते हैं इस तरह अल्लाह ताला दुरूद पढ़, ठीक है, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट बात हो जाएगी। अच्छा जी, फिर किसी जगह पे किसी मजलिस के आखिर में खड़े होके दुरूद पढ़ना, जैसे मिलाद वगैरह में वो लोग पढ़ने लगते हैं या कुछ है, इसकी कोई भी कहीं दलील नहीं मिलती। हमें ये कहा गया अजान के बाद दुरूद पढ़ा जाए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया अजान के बाद दुरूद पढ़ने का। हमें ये नहीं फरमाया कि अजान से पहले पहले अजान ही की एक लय में जैसे अजान दी जाती है उसी तरह तुम दुरूद भी पढ़ो, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इस तरह करके फिर उसके बाद अजान शुरू करनी है और पूरा ये पढ़ के, इसको भी नहीं सिखाया गया। अगर इसको कोई ये समझ के कि एक तरीका बना लेता है हमेशा का, तो ये एक बिद्दत बन जाती है फिर। इसी तरह इज्तमाई तौर पे दुरूद ऐसे खड़े होके पढ़ना और वो, और ये जहन में रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं और सुन रहे हैं और इस महफिल में आ गए हैं, ये भी हराम है। ये भी इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपने हाजिर नाजिर समझ लिया, तो फिर तो अल्लाह ताला की मतलब उसमें से सिफात में से एक चीज कर दी कि अल्लाह ताला जैसे वो हर जगह को देख रहा है, हर जगह को सुन रहा है, हर जगह का उसको खबर है, इल्म है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो गए। तो इस तरह से नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे यानी ये अकीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गायबाना तौर पे आप ये पढ़ रहे हैं, ये बात को समझते हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, वैसे हम ऐसे जैसे तशहुद में हम कहते हैं, अत्तहियात में कहते हैं सलाम अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि, तो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ये नहीं सोच रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, सलाम अलैका का की जमीर तो सामने वाले के लिए होती। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, सहाबा कराम को सिखाया था, खुद सिखाया, बुखारी और मुस्लिम में ये तशहुद में जो अत्तहियात पढ़नी है बुखारी और मुस्लिम में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसे ही सिखाया, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे ही नमाजें पढ़ी, और हर जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं मौजूद होते थे लेकिन वो इसी तरह पढ़ते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ये इसी तरह से वो पढ़ते रहे। तो जहन में ये अकीदा ना हो कि आप सुन रहे हैं, हमारी हाजतें पूरी करेंगे, जिस जुबान में भी हम पढ़ेंगे दुरूद वो आपको, आप सुन रहे हैं, ये अकीदा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कि हमारा दुरूद अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं जो कि हमारा दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पेश करते हैं, तो उस लिहाज से इस जो मैंने आपको अकीदा बताया है, इसके बगैर अगर गायबाना तौर पे इंसान कहता है अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलल्लाह, ये पढ़ता है दुरूद पढ़ता है, तो तब सही है। लेकिन अगर वो इस किस्म का अकीदा रखता है जैसे कि जो मैंने आपको भी बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, हमारी मजलिस में आ गए, ये वो सब गलत है, और इसके लिए ही खड़े हो जाते हैं और फिर पढ़ने लगते हैं ये इस रिस्पेक्ट में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो गए आ गए, ये सब फिर गलत हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह एक मजलिस में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बार बार आ रहा है, बार बार लिया जा रहा है, तो एक दफा कम से कम एक दफा जरूरी है कि दुरूद पढ़ा जाए। बार बार हर दफा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुस्तहब है, लेकिन एक दफा पढ़ना वाजिब है कि आप जरूरी है कि आप एक दफा कम अज कम पढ़ें, ठीक है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी एक दुरूद है, उसमें सलात भी आ गई और उसमें सलाम भी आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। आगे आज का सबक शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सूरत कब नाजिल हुई है? मदनी दौर में, 5 हिजरी में, ऑलमोस्ट यानी मिड समझ लें मदनी दौर का। और आप देख रहे हैं कि घरेलू जिंदगी के बारे में अहकामात दिए जा रहे हैं, औरतों को कई अहकामात दिए गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात को कई अहकामात दिए गए। अब यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया है, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया है, क्या, किसको कह दीजिए? ली अजवाजी का, अपनी बीवियों को कह दें, व बनाती का, और अपनी बेटियों को कह दें। सबसे पहले किसको कहें? अपनी बीवियों को। उसके बाद किसको कहें? अपनी बेटियों को। अच्छा, इससे पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां भी एक से जायद थी और बेटियां भी एक से जायद थी, क्योंकि बाज लोग ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सिर्फ एक ही बेटी थी और वो हज़रत फातिमा थी, और बाकी बेटियां जो थी वो सौतेली थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सगी बेटियों की बात आ रही है, क्योंकि बाकी जो जितनी भी औरतें वो तो सारी निसाइल मोमिनीन में आ गई ना। आगे वह निसाइल मोमिनीन, और निसा निस्वत उनकी जमा। अच्छा, अब निसा औरतें मोमिनों की, मोमिनों की औरतों से भी कह दें, यानी जितनी मुसलमान औरतें हैं उनसे भी कह दें। इससे यहां पता चला कि तमाम औरतों से, मगर सबसे पहले आप अपने घर की औरतों से शुरू करेंगे तबलीग को, इस बात को कहना, पहले अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी औलाद को, फिर उसके बाद बाहर जो जितनी ईमान वाली औरतें। हमें इससे सीक्वेंस भी पता चल गया कि जब तबलीग करनी है तो किस तरह से एक आदमी को तबलीग करनी होगी, ये वो अपने घर से शुरू करे, फिर उसके बाद बाहर करे। अगर ये नहीं करेगा वो कि अपने घर का पहले वेट करे कि पहले तो ये सुधर जाए तो फिर मैं बाहर वालों को तबलीग शुरू करूंगा, इसका नहीं, बताना उनको शुरू करेंगे, ये नहीं कि उनको इग्नोर करके बाहर वालों को बता रहे हो, मगर ये जरूरी है कि बता दिया तो अब इसके बाद आगे भी काम जारी रखे, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले तो कभी भी ना माने, तो हो सकता है बाहर वाला कोई मान ले। अच्छा, क्या उनको हुक्म है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया कि आप कह दीजिए, तो जरूरी कोई यानी इंपॉर्टेंट ही हुक्म होगा ना। क्या करें ये सब औरतें? युदनीना, लटका लें, अलैहिन्ना, आला है, इला नहीं है, ये भी नोट कीजिए, यहाँ पे इला होता है तरफ, आला होता है अपॉन, अपॉन का माना तो इंग्लिश में आप समझते हैं ना, ऊपर से, ठीक है, ऊपर से डाल लेना। अपॉन का माना ये होता है, ऑन एक अलग चीज होती है, अपॉन एक अलग चीज होती है, ठीक है। इंग्लिश से जो वाकिफ है उनको ये बात समझ आ रही होगी कि अपॉन में और ऑन में क्या फर्क है। अलैहिन्ना, ऊपर से अपने, मिन से जलाबीबिहिन्ना, जिलबाबों में से, अपने जिलबाबों में से कुछ हिस्सा अपने ऊपर से लटका लें। ये हुक्म दिया जा रहा है औरतों को कि जब औरतें अपने घर से निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी। सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं पहले घर के अंदर के लिबास का जिक्र, हालांकि सूरह नूर सूरह हुजरात के बाद नाजिल हुई है, लेकिन वहां पे हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ वो आयात आ गई है कि औरत जब घर से बाहर जाएगी तो ऐसे नहीं उठ के चली जाएगी कि जो घर में पहना हुआ है उसी तरह उठ के चल पड़े। शौहर के लिए घर में तैयार होके बैठी हुई है, मेकअप करके बैठी हुई है, पूरी अपनी बनाओ सिंगार के साथ बैठी हुई है, तो उसी तरह हम बाहर भी निकल गए, चाबी पकड़ी और चल पड़े, या जैसे अपने और महरम रिश्तेदारों के साथ बैठे हैं वैसे ही हम बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि जब वो बाहर जाने लगे हैं तो वो लटका लें अपनी चादरों में से कुछ हिस्सा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि जिलबाब क्या है, जिलबाब वो बड़ी चादर है जो सर से लेके पैर तक को ढांप ले, वो है जिलबाब कहलाती। अब इसके अंदर फरमाया गया कि कुछ हिस्से को लटका लें। अब ये कैसे लटकाया जाएगा, इसको हजरत इब्ने अब्बास ने इसकी तफसीर में बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की औरतों को हुक्म दिया है कि जब वो किसी जरूरत से अपने घरों से निकलें तो अपने सरों के ऊपर से ये चादर लटका कर चेहरों को छुपा लें और सिर्फ एक आंख खुली रखें, यानी सिर्फ देखने के लिए, रास्ता देखने के लिए आंख को खुला, यानी जितना ज्यादा अपने चेहरे को छुपा सकती हैं उतना छुपा के निकलें, और यानी सिर्फ देखने की हद तक हो इतना कि रास्ता वगैरह नजर आ जाए। कुरान करीम में आप देखेंगे कि ये जो पर्दे की आयात हैं, 7 आयतें नाजिल हुई हैं, 4 सूरह अजाब में हैं, 3 सूरह नूर में हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने सूरह अजाब में पढ़ा है कि औरतें वकरना फी बुयूती कुन्ना, अपने घरों में बैठे हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जब बाहर निकलें तो तबर्रुज ना करें, तबर्रुज के बगैर बाहर जाएं, और तबर्रुज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं वो भी हमने देखी हैं कि तबर्रुज कहाँ यानी कैसे कैसे होता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर औरत के लिए 5 चीजें आती हैं कि अपने जिस्म के जो हुसन है, अपनी बॉडी की नुमाइश ना करें, जेवरात की नुमाइश ना करें, पहने हुए कपड़ों की नुमाइश ना करें, रफ्तार में ऐसे नाजो अंदाज ना हो कि अपनी यानी चाल जो है वो ना नाजो अंदाज वाली हो, और परफ्यूम ऐसी खुशबुआत का इस्तेमाल ना करें कि जो फैलने वाली हो। ये सब तबर्रुज की चीज़ें हैं जो बता दिया गया कि तबर्रुज नहीं करना, ठीक है, वो उससे मना कर दिया गया। और फिर ये भी बता दिया गया कि आवाज में भी ऐसा ना हो कि आवाज ऐसी लोचदार हो, चाहे ऊपर हिजाब लिया हो लेकिन आवाज में ऐसा हो कि दूसरों को मायल करने वाली हो, अट्रैक्टिव बना के, या इस किस्म की आवाज या इस तरह से बात की जाए कि दूसरे का दिल मायल होने लगे, कोई उसके अंदर दिल में बात आ जाए, बल्कि स्ट्रेट बात की जाए, टू द पॉइंट बात की जाए, और कोई उसमें नाजो अंदाज और हंसियां खिलखिलाहटें और इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने सूरह नूर में भी देख लिया कि किस तरह औरतों से कहा गया है कि आप अपने जो दुपट्टे हैं वो अपने सीनों के ऊपर डाल लो, और हम आयात पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि किस तरह से औरतों को वहां पे बताया गया कि इस तरह से करो। और दूसरे ये कि कौन कौन से आपके रिश्ते हैं जिनके सामने आप जा सकते हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं उन सब से ही हिजाब होगा, पर्दा होगा, उन सब के सामने नहीं जाया जा सकता बगैर हिजाब के, ये हम पढ़ चुके हैं। याद रखें सतर और हिजाब में फर्क है। सतर और हिजाब का जब हमें फर्क नहीं ना पता होता तो फिर हम सतर को कवर करना ही काफी समझते हैं। औरत के लिए औरत के सतर की हदूद क्या हैं, नाफ से घुटने तक, और मर्द से क्या है, मर्द का मर्द से सतर भी वही है, नाफ से घुटने तक, लेकिन औरत का मर्दों से पूरा जिस्म ही सतर है सिवाय चेहरे के और हाथों के, यानी चेहरा आपने आपका सारा है, आपके हाथ हैं और पैर भी इसी में कयास किए गए, ये आप अपने भाई हैं, बाप हैं, ये सब इनके सामने खोल सकते हैं, ये महरम रिश्ते हैं उनके सामने खोले जा सकते हैं, ये सतर है। हिजाब इसका मतलब इस ऑन टॉप ऑफ इट कुछ होगा, जाहिर है सतर और हिजाब एक ही चीज़ तो नहीं है ना। तो ये तो वो चीज़ें हैं यानी चेहरा और हाथ पैर, ये महरम रिश्तेदारों के सामने खोले जा सकते हैं, ठीक है। अब ना महरमों के सामने कोई औरत इससे भी कम में चली जाए जिसमें सिर्फ महरम के आगे जा सकते थे, मसलन बाजू आधे कर ले, गला डीप कर ले, गर्दन खुली हुई हो, टांगे भी आधी कैप्रीज पहन के आधी खोल ले, तो ये जायज नहीं है। ये तो महरम उसके आगे भी नहीं खोल सकते, तो इसलिए सतर और हिजाब में फर्क को समझें, और सतर को किसी के सामने भी नहीं नंगा कर सकते सिवाय जैसे शोहर के आगे। तो ये ऐसे यानी ममनू रिस्ट्रिक्टेड समझ लें इंसान के बॉडी पार्ट्स होते हैं जो सतर के हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार कभी नंगे ना रहो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो तुमसे कभी जुदा नहीं होती माँ सिवाय रफ़ा हाजत के और अपनी बीवी के मुबाशरत के औकात में, लिहाजा उनसे शर्म करो, यानी फरिश्ते होते हैं साथ उनका एहतराम करो। इसलिए इंसान को अकेले में भी, पूरे घर में कोई अकेला, बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी ये है, लो मैं तो अपने कमरे में ही अकेली हूं ना, कमरा लॉक कर दिया और नंगे होके बैठ गए, अपने सतर भी खोल लिया, ये नहीं करना चाहिए। यानी कोई भी नहीं है तब भी इंसान के साथ फरिश्ते तो है ना, इसी वजह से मुर्दे का भी आप सतर नहीं देख सकते, मुर्दे का। और कहां ये कि यहां पे आज के वक्त के अंदर औरतें सतर भी खोले घूम रही, यानी हिजाब का तो दूर की बात है, सतर भी खुल गया। तो सतर जरूरी है चाहे कोई हो या ना हो, ठीक है। अब हिजाब जो है ना वो सिर्फ गैर महरम के लिए है, हिजाब हर वक्त जरूरी नहीं कि इंसान हर वक्त हिजाब में रहे, हिजाब सिर्फ जिस वक्त गैर महरम होगा तब हिजाब लिया जाएगा, लेकिन सतर हर वक्त ही उसका यानी कवर होना चाहिए। हाँ, बाज जरूरियात के तहत एक्सेप्शनल सूरतें भी हैं जिनमें के औरत अपना हिजाब खोल सकती है गैर महरम के सामने, मसलन मंगनी है, यानी मंगनी से मतलब है कि किसी ने रिश्ता डाला है और वो लड़की को देखना चाहता है, तो वो मर्द देख सकता है औरत को, ताकि वो बाद में ये ना हो कि उसको ये हो कि मैंने इसको देखा ही नहीं था तो मुझे तो नहीं पता, वो भी सतर उसका कवर रहेगा, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह काजी है, गवाही देने के लिए औरत आती है तो उसका चेहरा देख सकता है। इसी तरह आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या आप इमिग्रेशन के लिए कहीं और खड़े हुए हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, वहां पे वो आपको कहते हैं कि आप अपना चेहरा दिखाएं, सिक्योरिटी रीजन है, उसके अंदर आप अपना चेहरा खोल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मसलन औरत मौजूद नहीं है और इलाज कराना है, मर्द ही सिर्फ है, तो फिर उसमें खोला जा सकता है अपना हिजाब। इसी तरह अल्लाह रहम करे कहीं आग लग जाए या कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो फिर उसके अंदर भी जाहिर है एकदम उस वक्त ये तो नहीं देखेंगे कि अपनी चादरें पकड़ें और अपनी जिलबाब पकड़ें, उस वक्त तो जैसे तैसे भी इंसान अपनी जान बचाने का करेगा। तो ऐसे कोई है हादसा ऐसा हो जाए, कोई ऐसी जलजला आ गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई है, तो फिर उसके अंदर इतनी सी रुख्सत मिल सकती है कि उसमें अपना फिर हिजाब अगर गैर महरम के सामने खुल भी गया तो इसके अंदर फिर पकड़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हिजाब सतर आदमी के लिए भी है और औरत के लिए भी है, हिजाब सिर्फ औरत के लिए, वो आदमी के लिए नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात। इसलिए कि जो औरत की नजर गैर मर्द पे पड़ना है ना, वो इतना खतरनाक नहीं है जितना मर्द की नजर औरत के ऊपर पड़ना खतरनाक है। आप देखें इस दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने किसी मर्द को रेप किया, ठीक है। तो इसलिए मर्द की तो इज्जत महफूज ही रहती है, औरत की इज्जत है जो नाजुक है, औरत की इज्जत है जो बहुत प्रेशियस है, इसलिए अल्लाह ताला ने औरत को कवर करने का हुक्म दिया है। इसके अंदर उसके लिए खैर और भलाई है, उसकी हिफाजत है, उसकी सिक्योरिटी है, और अल्लाह से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि किसकी सिक्योरिटी किसमें है। जितनी दुनिया के अंदर काम की चीजें हैं, जैसे मतलब ये फ्रूट्स वगैरह हैं, आप देखें सब कवर में है, ऑरेंज को देख लें, केले को देख लें, तरबूज को देख लें, अनार को देख लें, ये नाजुक चीज़ें हैं, इनको अल्लाह ने कवर के अंदर किया हुआ है। आप कवर के बगैर ये कहीं पड़ी हो तो आपको खाने को दिल नहीं चाहेगा, आप कहते हैं कवर के साथ हो, क्योंकि आपको पता है जब कवर के साथ है ये साफ सुथरी चीज़ है, ये सही चीज है। जो कवर के बगैर कहीं आप मेज के ऊपर केला बगैर कवर के पड़ा हो छिलके के, तो आप खाएंगे उठा के। इसी तरह आप देखें एक पिक्चर में उन्होंने दिखाया एक लॉलीपॉप है जिसके ऊपर से कवर उतरा हुआ, तो उस पर मक्खियां बैठी हैं, जो कवर के साथ है उसके ऊपर कोई मक्खी नहीं बैठी। वजह क्या है कि जब औरत बगैर अपने हिजाब के निकलती है तो उस वक्त वो मर्दों के लिए अट्रैक्शन का बायस बनती है। अब हम, मैं और आप एक दूसरे को देखेंगे तो हम कहेंगे इसमें क्या अट्रैक्शन है, उसमें क्योंकि हमारे लिए एक दूसरे के अंदर नहीं अट्रैक्शन है। लेकिन आपको नहीं पता होता कि मर्द के दिल में किस औरत के लिए अट्रैक्शन हो जाए, ये हम नहीं जानते। तो ये खुद ही से कयास कर लेना, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन अब किसने देखना, ये आपकी अपनी कहने की बातें हैं। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कोई देखेगा या नहीं देखेगा, अल्लाह को बेहतर पता है कि किसके लिए क्या अहकामात जरूरी है। ये मेरे और आपके डिसाइड करने की बात नहीं है। तो ये जो सूरह अज़ाब में आयात उतरी, जब ये उतरी इससे पहले औरतें जीब और जीनत के साथ बाहर जाया करती थी, लेकिन जब ये आयात उतर गई उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी के घराने की भी और साथ साथ बाकी जितने मुसलमान घराने थे उनको ये हुक्म दे दिया कि अब के बाद ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब हम सोचते हैं जिसको हम कहते ना हिजाब, हिजाब ये जो मैं अभी उस वक्त से हिजाब बोल रही हूँ, आपके शायद जहन में ये आ रहा होगा कि हिजाब मींस कि मैं ना ये स्काफ लेना शुरू कर दूं, ये हिजाब हो गया, अब मैं पर्दे में आ गई हूँ। हालांकि यहाँ पे तो हिजाब का लफ्ज ही नहीं है, शायद में देखें हिजाब का लफ्ज नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे तो जलबाब का लफ्ज है, जलाबीबी हिन्ना है, हिजाब किधर लिखा हुआ। ये स्काफ को हिजाब नहीं कहते, ठीक है, जिलबाब है जो पर्दा है। हिजाब क्या चीज होती है भाई, ओढ़, यानी एक आड़ आ जाना, एक रुकावट आ जाना, यानी मर्द और औरत जो गैर महरम है उनके दरमियान एक पर्दा आ गया, हायल हो गया, एक रुकावट हायल हो गई है। क्या ये स्काफ वाकई एक रुकावट हो गई है मर्द और औरत के दरमियान? अच्छा, तो ये एक बात, मेरा ख्याल सबको इल्म है कि क्या है या नहीं है। तो एक बात हमने सीख ली कि जो हिजाब है वो क्या चीज है, वो असल में आड़ है, और अल्लाह ताला ने पहली पाबंदी इसी वजह से ये लगाई कि घरों के अंदर रहो, वो एक पर्दा है औरत के लिए। सबसे पहला पर्दा कैसे बताया कि घर के अंदर रहो, क्योंकि घर के अंदर रहोगी तो इटसेल्फ कौन, तुम पर्दे में ही रहोगी, जाहिर है फिर मर्दों की नजरों में आओगी ही नहीं। ठीक है, नंबर टू, जब आप घर से निकलोगी फिर कैसे निकलोगी, फिर इस तरह से निकलोगी कि जैसे यहां पे कहा गया कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, युदनीना दना यदना का माना होता है करीब होना और झुकना लटकना, ठीक है, यानी अदना अब क्या माना हुआ, करीब करना, झुकाना, लटकाना, ठीक है। अदना इलई हिन्ना मिन जलाबी भी हिन्ना अगर होता इला अलिफ के साथ तो वो फिर माना वो बन जाता है जिसको बाज लोग ये माना लेते हैं कि चादरों को अपने जिस्मों के करीब कर लें, यानी बुक्कल मार लें, जिसको हम कहते हैं चादर की बुक्कल मार लें। लेकिन जब हम कहते हैं युदनीना अलैहिन्ना आला, तो इसका माना क्या बन जाता है कि लटका लें, ऊपर से लटका लें, जिसको हम कहते हैं चेहरे का घूंघट निकाल लेना, ठीक है। और अब यहां पे ये चीज है जो थोड़ी सी इख्तलाफी है, बाकी किसी चीज में इख्तलाफ नहीं है। एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं, नंबर वन, क्या पर्दे का पहला दर्जा क्या है, घरों में रहो, घूमती ना ऐसे ही फिरो, हाँ जब तक कि जरूरी ना हो। और जरूरत क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे कि किसी से मिलना जुलने के लिए कहीं जाना है, कहीं कहीं आयादत करनी है, कहीं इल्म सीखने के लिए जाना है, कहीं और कोई जरूरत है उसके लिए निकलना है, तो तब तो निकलो। लेकिन यहाँ किसी को मुलाजमत की जरूरत है, किसी औरत को ऐसे हालात हैं, मुलाजमत उसको करनी पड़ रही, उसके लिए उसको जाना पड़ता है, तो फिर वो तो घरों से निकलेंगी उस काम के लिए। लेकिन ऐसे ही घूमते फिरना, घर में बोर हो रहे हैं, चलो उठो जाओ, चाबी पकड़ी उधर चले गए, चाबी पकड़ी उधर चले गए, घूमते रहे भाई, सड़कों पे घूमते जा रहे, ये नहीं है बात, घर में रहो। औरत का असल मकाम घर है, घर में दिल लगाने की कोशिश करें, ना कि बाहर सड़कों पे दिल लगाएं और मॉलों में दिल लगाएं, ये नहीं औरत के लिए जायज। अच्छा, कुछ नहीं भी चाहिए, बस घूमने के लिए चल रहा, घूमना, घूमते जाना बगैर वजह के, ये औरत के लिए सेफ भी नहीं है और इसमें उसके लिए ये इजाजत भी नहीं है। अच्छा, दूसरा फिर पर्दे का क्या है, सर से पैर तक लंबी चादर जो पूरे बदन को छुपा ले, ठीक है, जो पूरे बदन को छुपा ले, ये जलाब जिलबाब है। इसके अलावा तीसरा दर्जा ये है कि औरतें जब घर से निकलें तो जिलबाब को ऐसे करें कि अपना चेहरा और हथेलियां या हाथ इनको भी लोगों के सामने ना खोलें। ये तीसरा दर्जा। इस तीसरे दर्जे में सिर्फ एक थोड़ा सा यानी फुकहा के दरमियान थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है, बाज़ इसको इसके हक में है बाज़ इसके नहीं है, इसलिए कि जो हमने पहले पढ़ा था सूरह नूर में वहां पे हमने पढ़ा था कि सब कुछ अपने अपनी जीनत को नहीं जाहिर करना इल्ला मा दहरा, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि चेहरा और हथेलियां यानी हाथ और चेहरा बाज लोग कहते हैं यही है जो खुद ब खुद जाहिर हो जाते हैं, इसलिए ठीक है इनके लिए जायज है कि ये खुल जाए। दूसरे कहते हैं कि नहीं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मतलब है कि जो आपका चादर है उसको तो आप छुपा नहीं ना सकते, जो आपका कद काठ है उसको नहीं छुपा सकते, जो आप मोटी हैं या पतली हैं उसको नहीं आप छुपा सकते। तो ये चीजें हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा जिनको आप कभी छुपा ही नहीं सकते, अब क्या करेंगे इनका, जितना मर्जी आप कवर कर लें 10-10 बुरके भी पहन लें ये चीजें नहीं छुपेंगी। तो वो कहते हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में ये है, ये सिर्फ दो, ये इख्तलाफ सिर्फ है, दो राय हैं जो इसकी वजह से यहाँ पे बाज ने कहा कि नहीं सिर्फ चादर को लपेटने का है, बाज ने कहा कि नहीं ऊपर से लेने का है यानी ऊपर से लटका लो यानी नकाब भी कर लो। अब आपको ये मैं बता दूं, अभी मैं बिल्कुल आपको क्लियर क्लियर बातें इसलिए बता रही हूं कयामत के दिन आप में से कोई ये खड़ा होके ना कहे कि इन्होंने हमें बताया नहीं था हमारी टीचर ने, सही अगर ये बताती तो हमें समझ आ जाती तो हम ऐसे करते। इसके बाद मैं कम अज कम बरी हूँ जिम्मा, जो लोग 10-10 दफा इन आयात को पढ़ चुके हैं सुन चुके हैं याद इसके तर्जुमे कर चुके हैं, अगर वो फिर भी नहीं मानते तो अल्लाह के सामने हिसाब खुद देना, किसी ने किसी का हिसाब नहीं उस दिन खड़े होकर देना, ना हमारे किसी हस्बैंड ने देना, ना किसी के पेरेंट्स ने देना, ना हमारी सहेलियों ने देना और ना ही लोगों ने देना, ठीक है। और जो लोग ये समझते हैं कि हम इसकी वजह से अनसेफ हो जाते हैं, तो एक मेरी बात याद रखें कि जब आप हिजाब, ये जिसको हम हिजाब कहते हैं ना, स्काफ लेती हैं, उसी से आपकी पहचान हो जाती है कि आप एक मुसलमान औरत हैं। अब उसके बाद कोई आदमी इस वजह से नहीं आपको बख्शेगा कि या उसको वो कर लेगा कि चलो जी इसने नीचे तो जीन्स पहनी हुई है अगर ऊपर हिजाब ले लिया तो कोई बात नहीं, वो ये नहीं देखते। आप नीचे जिलबाब पहने या नहीं पहने वो बस आप मुसलमान हैं, अगर किसी ने किसी मुसलमान को तंग करना होगा तो फिर वो तंग करेगा, किसी ने कुछ कहना होगा तो वो इतना काफी काफी, हम सोचते हैं जिलबाब पहन लेंगे तो शायद ज्यादा तंग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और हिफाजत सिर्फ अल्लाह की होती है, किसी इंसान, हम जब ये पढ़ चुके हैं ना ये हदीस सुन चुके हैं कि पूरी दुनिया मिलके तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना, और पूरी दुनिया मिलके तुम्हें फायदा देना चाहे नहीं दे सकती जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना। इसके बाद फिर क्या रह गया, या तो हमें ये बिलीव ना हो, हम ये समझते हो यहाँ भी उनके हाथों के अंदर कोई खैर या शर है तो फिर हम उनसे डरते हैं, उससे भी डरते हैं, उससे भी डरते हैं, तो फिर तो बाहर ही ना निकले फिर आप डर के मारे, फिर घर क्यों नहीं बैठ जाते। उसका हमने हल क्या निकाला कि हमने कहा जिलबाब को छोड़ दो, बस छोटी सी स्काफ ले लो ऊपर जिसमें भी आधा सर नजर आए और बस हम ऐसे घूमें तो ये सही होगा, ये नहीं। दूसरी बात याद रखें यहाँ पे जिलबाब की जब बात आई है, अगर आप ये समझते हैं कि जो शलवार कमीज हम पहनते हैं यही जिलबाब है तो ये यहाँ पे ये क्या कहना है, मतलब क्या यहाँ पे जो कहा गया जिलबाब, मुझे सिर्फ इतना कोई समझा दे कि फिर ये जो चादर की बात कही गई तो अगर ये कपड़े ही वो हैं तो ये चादर फिर क्या चीज है, और अगर आप समझते हैं कि एक ही कवरिंग होनी चाहिए तो क्या आप कपड़े नीचे के उतार के सिर्फ चादर पहन लेनी चाहिए, ये मतलब है यहाँ पे कि अपनी चादरें पहनो, तो मतलब ये कि एक ही कवरिंग आप समझते हैं कि एक ही कवरिंग होनी चाहिए और ये हमारे कपड़े चादर ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चादर की आयत में जो चादर का हुक्म है ये क्या ये हुक्म दिया जा रहा है कि कपड़े उतार दो और चादरें पहन लो सिर्फ, यहाँ पे तो ये है ना कि कपड़ों के ऊपर चादर लो, हम इन्हीं कपड़ों को कैसे कह सकते हैं कि ये ही चादर है, ये कैसे हम ये शलवार कमीज को कह सकते हैं ये हम शादी कर देते हैं तो ये चादर हो गई, हम इसको बिल्कुल प्लेन पहनते हैं, हम बिल्कुल सॉलिड कलर की पहनते हैं तो यही मेरी चादर है, मेरा जिलबाब ये है, जिलबाब तो इसके टॉप ऑफ इट कहा गया है, टॉप ऑफ इट, ऐसा नहीं है कि इन कपड़ों को ही हम कह दें। اب آپ کو یہ میں بتا دوں کہ آئمہ اربع میں سے چاروں اماموں میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تینوں نے یہ مذہب اختیار کیا کہ چہرہ اور چہرے کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو. امام ابو حنیفہ نے صرف دوسرا مسلک اختیار کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں خوف ہو فتنے کا تو تب آپ چہرہ کور کریں، اگر نہیں خوف ہے تو پھر آپ کھول سکتے ہیں. یہ ان کا صرف ہے، باقی تینوں اماموں نے یہ کہا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے، چہرہ بھی چھپانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ان کا یہ ان کی یہ بات، یعنی چاروں میں سے تین کی یہ بات، آپ سوچیں گے کس طرف کو زیادہ کا انکلینیشن. اور امام ابو حنیفہ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ پھر اس کے بعد تم جب چہرہ تم کھول کے چلی جایا کرو لیکن اس کے اندر فل میک اپ کر لیا کرو اور زینت اپنی اظہار کیا کرو. جبکہ ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، نہ ظاہر کریں یہ اپنی زینتوں کو مگر جو ظاہر ہو جائے خود بخود. تو جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اگر آپ چہرے کو لیتے ہیں تو وہ بھی اگر بغیر زینت والا ہے، زینت والے چہرے کو تو پھر آپ نے زینت ہی کھول کے رکھ دی. بعض نے اس کے اندر ظاہر ہے یہ لیا کہ بھئی زینت سے مراد یہ یہاں پہ جو ایکسٹرنل زینت ہے وہ مراد ہے کہ مطلب الا ما ظہر منہا میں، کہ سوری ولا یبدین زینتہن میں، کہ اپنی زینت نہ ظاہر کرو، یعنی جو ایکسٹرنل ہے. دوسروں نے کہا نہیں، چہرہ تو سب سے بڑی زینت ہے، اس کو بھی ظاہر نہ کرو، کیونکہ چہرہ ہی تو زینت ہے انسان کی. چہرے کا، کیونکہ آپ کسی کوئی آدمی پسند کرنے جاتا ہے، کوئی شادی کرنے جاتا ہے تو چہرہ ہی تو دیکھتا ہے. اگر اس کو دکھا دیں ہاتھ اور پیر دکھا دیں اور کہیں یہ دیکھ لو شادی کر لو، تو کوئی کہے اصل تو اس کی صورت ہے. اسی لیے جب کوئی تصویر بھیجتا ہے تو لڑکی کی صورت ہی تو بھیجتے ہیں کہ اصل بیوٹی اس میں ہے. تو وہ کہتے ہیں ولا یبدین زینتہن میں یہی تو ہے کہ نہ ظاہر کرو اپنی زینت، اپنے چہرے نہ ظاہر کرو، اپنی یہ چہرہ آپ کی بیوٹی ہے اس کو نہ ظاہر کرو. دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ ایکسٹرنل زینت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے میک اپ لگایا ہو، آپ نے یہ لگایا تو اس کو ظاہر نہ کرو. اب اس کے اندر پھر آگے ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو مگر اپنے خامدوں کے سامنے، مگر اپنے باپوں کے سامنے، مگر اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے، بیٹوں کے، خامدوں کے بیٹوں کے، یعنی ستیلے بیٹے، یا اپنے بھائیوں یا بھائیوں کے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، اس طرح کی لسٹ پوری دے دی گئی ہمیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ لسٹ کی کیا ضرورت ہے پھر، اگر ہم نے سب کے سامنے اسی طرح جانا ہے جیسے باپ کے سامنے رہنا ہے، اسی طرح ہم نے سب کے سامنے جانا ہے، تو پھر اس کی ضرورت کہاں ہمیں یہ مطلب سوچتے ہیں ہم کہ کیسے الاؤ ہو جاتا ہے، کیسے اس کی کہیں سے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، کہیں سے کوئی بات ہونی چاہیے کہ ہم جہاں سے لے کر آئیں کہ کس طرح سے. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ تھا، کہ یہاں پہ تو نسال مومنین ہے، مومنوں کی عورتیں، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ کیا وہ اس کو جھٹلاتے ہیں؟ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں، میں اس کو ایسے سمجھتی ہوں، میں نہیں یہ سمجھتی کہ یہ آج ہو سکتا ہے، میں نہیں یہ سمجھتی، تو تھوڑی سی ہمیں اس میں حیا کر لینی چاہیے کہ ہم کس کے حکم کے آگے اپنی عقل کو کھڑا کر رہے ہیں. یہ نہ میری بات ہے، نہ کسی مولوی کی بات ہے، نہ کسی فلاں کی بات ہے، نہ فلاں کی بات ہے، یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ آپ کے سامنے، ڈائریکٹ آپ کے سامنے اللہ کی بات ہے، کسی کی بھی نہیں بات ہے. اور جلباب کا حکم دوپٹہ نہیں ہے، جلباب وہ تو خمار ہے، وہ تو سورہ نور میں آ گیا ہے. جلباب تو بڑی چادر ہے، سر سے پیر تک اس کو لٹکانا ہے. کسی نے پوچھا کہ ایک بالشت لٹکا لے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ کا فرمایا، تو اس نے کہا کہ ایک ہاتھ لٹکا لیں، تو ایک ہاتھ لٹکانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اتنی زیادہ لٹکی ہونی چاہیے، یعنی پیروں تک آئے. تو یہ جلباب صرف سینے پہ پڑا ہوا دوپٹہ نہیں ہے، یا یہ شرٹ نہیں ہے جو آپ کہیں کہ یہ جو میں نے پلین شرٹ پہنی یہی جلباب ہے، اور نہ ہی سکارف آپ کے جلباب ہے، اس کو جلباب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ جلباب کھلی چادر ہے. اب اس کا اسی کو جب ہم سی لیتے ہیں تو ہم اس کو ابایا کہہ دیتے ہیں، لیکن اب ابائے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ وہ اتنا فٹنگ والا ہو کہ اس سے بھی سینہ بھی نظر آ رہا ہے، ہپس بھی پتہ چل رہے ہیں. اگر کوئی ایسا اے لائن ٹائپ ہی چلو ہو جس کے اندر ہپس نہ پتہ چلیں، سینے کے آگے بھی آپ نے سکارف پورا پہنا ہوا ہے سارا، وہ ایک الگ بات ہے. लेंगे, अदरवाइज ऐसा टाइट पहन लेना और स्कार्फ को बिल्कुल ऊपर चढ़ा लेना, अब फिर बात तो वही हो गई। अब आपने अपनी तरफ से जिलबाब लिया हुआ, लेकिन फिर वो जो जिन हिस्सों को खास तौर पे कहा गया कि इनको छुपाओ, उन्हीं को जाहिर कर रहे। तो जिलबाब शर्ट भी नहीं है, जिलबाब शलवार के आधे हिस्से को ढांप लेना भी नहीं है, जिलबाब पाँव से पाँव तक जो चादर आती है वो उसको कहते हैं, पाँव से जो ऊपर चीज हो उसको जिलबाब नहीं कहा जाता। अब अगर कोई औरत ऊंची सी एक पहन ले कोई बुरका और उसके बाद ये सोचे कि नीचे मैंने हील्स पहन ली हैं और नेल पॉलिश लगा दी है और पूरा ऊपर से कवर कर लिया, खुद अंदाज़ा कीजिए कि उसके बाद क्या होगा। किसी पूरे जिस्म में से पैर ही नज़र आना है, कोई पैर ही देख के अट्रैक्ट हो जाएगा, इतने नेल पॉलिश ही हैं और उसमें खूबसूरत सैंडल हैं और उसमें ऐसे हैं। अब पैरों की बात इसलिए नहीं आई कि जब जिलबाब इतना लंबा होगा तो पैर खुद ब खुद आधे तो कवर हो जाएंगे। तो ये हुक्म दिया गया है जिलबाब का। अब इसके अंदर किसकी सुननी है और किसकी नहीं सुननी, ये फैसला तो औरत को ही करना है कि मैंने शौहर की सुननी है कि मैंने अल्लाह की सुननी है, मैंने माँ बाप की सुननी है या मैंने कुरान की सुननी है, ये तो आपको फैसला करना है। कब्र में भी आपने अपनी जाना है, मैंने अपनी जाना है, अब शौहर ने अपनी जाना है, वालदैन ने अपनी जाना है, किसी ने दूसरे की कब्र में नहीं जाना, किसी ने दूसरे का हिसाब किताब नहीं देना। अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। ये अलग बात है कि अब हम खुद ही ना सुनना चाहें ना हम देखना चाहें और बस इसको किसी ना किसी तरह अवॉइड करने के लिए फलां तो ये कहता है, वो तो वो वाले फतवे उठा के ले आए कि फलां ने वो उन्होंने तो ये कहा है। जो आप तफसीर देखेंगे ना वो देखें जो सबसे पुरानी चली आ रही है उस वक्त से, जो सहाबा ने तफासीर की, ये नहीं कि आज का कोई खड़ा होकर कह दे नहीं नहीं जी अब तो इजाब की जरूरत ही नहीं है। आप वो तो ये पुराने जमाने का था, मुनाफिकीन औरतों को छेड़ते थे तो इसलिए कहा गया था। अच्छा इतना ही था, ये अल्लाह ताला को ये पता था कि उसके बाद तो कोई मुनाफिक तो होना ही नहीं है, कोई मुनाफिक नहीं होगा, तो लिहाजा औरतों को जरूरत भी नहीं होगी पर्दे की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही सबसे ये मुनाफिकीन बुरे लोग थे, उसके बाद तो सारे नेक और पारसा चले आएंगे, तो ये तो हुक्म फिर कुरान में मौजूद ही नहीं होना चाहिए था, ये तो मनसूख हो जाना चाहिए था। क्या ख्याल है, अगर सब इसके बाद नेक पारसे, हम कहते हैं हमारी हमारी आंखों में तो बहुत शर्म है और मेरा दिल तो पाक है ना, आपके दिल की तो कोई बात भी नहीं कर रहा, आप अपने आप को थोड़ी देख रहे हैं, लोग देखते हैं उनके दिलों की कौन गारंटी लेगा। अल्लाह ताला ने तो मोमिन औरत की हिफाजत फरमाई है और सिर्फ इससे उसकी हिफाजत नहीं होती, पूरे माशरे की हिफाजत होती, क्योंकि सबकी फिर दिल पाक रहते हैं। आपको क्या पता कि किसी के दिल में क्या ख्याल आ रहा है। ये अब क्लास ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई स्टोरीज किसी को डिस्कस करूँ या कुछ है, लेकिन मैं आपको इतनी बात ज़रूर बता दूँ कि मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जिनसे मेरा दिल दहल जाता है कि क्या क्या बाहर हो रहा है और किस किस्म के हालात हैं बाहर, यानी आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि आप ये भी ना सोचेंगे मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं तो बच्चों वाली हूँ, लिहाजा मुझे आप कौन देखेगा, मुझे आप कौन कुछ कहेगा, मुझे मेरे बारे में कौन कुछ कुछ सोच सकता है, ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये आपको नहीं पता है कि क्या 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 हो रहा है। कोई तो अप्रोच कर लेगा, कोई दिल ही दिल में बहुत कुछ सोच लेगा और प्लानिंग कर लेगा और वो हो जाएगा, कोई ऐसा भी होगा जो सिर्फ फ्रैंक होने की कोशिश करेगा, दिल लुभाएगा, कोई किसी ने किसी साथ शादी थोड़ी करनी होती, वो बस दिल लुभाना ही होता। तो ये चीज़ों को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया है, ये तुम्हारी इज्जत के लिए है, ये तुम्हारे लिए है। कौन कैसे देख रहा है ये अल्लाह को बेहतर मालूम है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया औरत पर्दे का नाम है, औरत पूरी की पूरी पर्दा है, जब वो घर से निकलती है तो शैतान उसको झांकता है, यानी आप शैतान झांकने लगता है उसको, फिर शैतान लोगों के दिलों में उसके बारे में बातें डालता है, लोगों के दिलों के अंदर उसके लिए जज्बात डालता है। अब हम कहें नहीं हमारे लिए तो कोई नहीं ऐसा सोचता, एक तो सबसे पहली बात हमारे पास इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी के दिलों की गारंटी नहीं, किसी के ख्यालात की गारंटी नहीं। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में भी सुना जिनका सोचते हैं, अब औरतें होते हुए हमें लगता है कि इसको कौन, इसको भी किसी ने ऐसा कहा, यानी इंसान हैरान होता है कि ये तो बच्चों वाली है, ये तो एज वाली है, इसको भी लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि जिस कदर गलीज माशरा हो गया है आज के दौर में, जितना हर तरफ ये बेहयाई और फहाशी आम हो गई है इतनी ज्यादा कि यानी अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह माफ करे, कई महरम रिश्ते भी यानी उनके अंदर भी खराबियां आने शुरू हो गई हैं, तो और किसी की बात क्या करें। तो इसलिए जहां अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उसको मानने में हमारे लिए खैर है, खुदा के लिए इस बात को समझें कि ये मेरे लिए भलाई है। नंबर टू बात ये कि ये अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह का हुक्म आ गया मुझे चूचरा का कोई राइट नहीं, मेरी अकल क्या चीज है, क्या है मेरी और आपकी अकल बताएं, उसको लेके हम अल्लाह के मुकाबला करेंगे और ये बातें सुनाएंगे कि ये सही नहीं है या ये सही है, या इसमें कितना डेंजर है और इसमें कितनी सेफ्टी है, क्या अल्लाह का कुरान कयामत तक के लिए नहीं है, और क्या मुझे और आपको अल्लाह के सामने नहीं खड़े होना, फिर हम कैसे जुर्रत करते हैं ऐसी चीजों की। तो मां से बात, चलो अगर आप दूसरा आप ओपिनियन भी अगर लेकर अपने आप को सोचते हैं कि अच्छा चलो हम ये सोचते हैं कि आज का फितने का दौर ही नहीं है, चलो भाई मान लिया आपका बात को कि फितने का दौर नहीं, तब भी चेहरे और हाथों के सिवा तो सारे जिस्म को ढांपना ही है, और ऐसी चादर या ऐसे एक आउटर गारमेंट से ढांकना है, ऐसे कपड़े से ढांकना है जिससे जिस्म ना जाहिर हो, ना उसकी शेप और ना कोई सी थ्रू ऐसी चादर या वो कि जिससे अंदर नजर आ रहा, ना ना सर के बाल नजर आए, ना गर्दन नजर आए, ना सीना नजर आए, ना कलाइयां नजर आए, ये कोई भी चीज ना नजर आए। और अगर चेहरे पे जीनत की भी है, मेकअप किया हुआ है, तो उसको तो छुपाना जरूरी है, वो तो फिर कुरान की सूरह नूर की आयत के तो बिल्कुल ही खिलाफ आप चले गए कि वहां पे कहा गया जीनत जाहिर नहीं करना, और हम जुरत करें नहीं, हम जाहिर करके दिखाते हैं। तो फिर जब जब हम बाहर निकलेंगे ना, हम अल्लाह को चैलेंज करते हैं, हमने ये पढ़ भी लिया, अल्लाह अब हम तुझे करके दिखाएंगे, ऐसा सोच लें फिर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो इसलिए यानी हम जब इतनी दफा कुरान पढ़ लें और फिर हमें समझ भी आ रहा हो, फिर उसके बाद वो हम वही तरीके अपनाएं जिस पे हम पहले थे, और वैसे ही चलें और उस इसको समझें कि कुछ नहीं हुआ और इससे क्या फर्क पड़ता है, और ये तो दकियानूसी बातें, तो हमने क्या पढ़ा कुरान में, अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए फायदा बताया, ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युअज़ीन, ये ज्यादा करीब है। अभी वो युदनीना में अदना का लफ्ज आया ना, वो भी यही चीज है जो यहाँ पे अदना लफ्ज है, ये ज्यादा इसके करीब तर है कि वो पहचान ली जाए तो वो अजियत ना दी जाए, यानी आपकी पहचान हो जाएगी। इस तरह हम कहेंगे ये तो सब पहन के तुम्हारी पहचान कैसे होगी, अगर हमने घूंघट भी निकाल लिया या चेहरे को भी छुपा लिया तो फिर पहचान कैसे होगी। यही पहचान का मतलब ये नहीं है कि एक एक बंदी का नाम पहचाने, ये फलां है, ये फलां है, फलां, नहीं, पहचान का मतलब ये है कि ये पहचान ली जाए कि ये शरीफ औरतें हैं, ये खानदानी बाकिरदार औरतें, ये ऐसी वैसी कोई औरत नहीं है कि जिसके साथ मैं कोई छेड़खानी करूं, कोई बात करूं, कोई आगे अप्रोच करने की कोशिश करूं तो ये मुझे एंटरटेन करेगी। ये मैसेज है जो आपका स्काफ अबाया, आपका प्रॉपर जो आपका हिजाब है, ये मैसेज दे रहा होता है कि आई एम नॉट अवेलेबल, मुझे। और वाकई ऐसा होता है जब कोई औरत सही अपने हिजाब और उसके अंदर होती है तो क्या होता है, मर्द खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते हैं, खुद ब खुद इज्जत देने लगते हैं, खुद ब खुद आगे लोगों के बात नहीं करते, और आप बाल खोल के चले जाएं, मेकअप करके चले जाएं और रंग बरंगे प्यारे कपड़े पहन के चले जाएं, खुद ब खुद आदमी अप्रोच करेंगे, बहुत सारे लोगों को आपको सलाम करना याद आ जाएगा और आपसे बहुत सारी बातें करनी याद आ जाएंगी, आपका हाल अहवाल पूछना याद आ जाएगा। एक भी मुझे बंदा दिखाएं जो कि कोई सही प्रॉपर हिजाब और उसके वाली, और हिजाब से मेरा सारा मतलब ये है कि जो इस्लाम में हिजाब है, वे वाला हिजाब नहीं कह रही जो कि हम छोटी सी दुपट्टिया सर पे लेके और सीना पीरा पूरा खोल लेते हैं और उसके बाद कैट वॉक करते हुए चले जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं मैं बड़ी हिजाब में और मेकअप भी हमने फुल किया हुआ, ये हिजाब नहीं कह रही। जो इस्लाम में हिजाब है वो उसके अंदर कोई औरत हो तो किसी आदमी की जरूरत नहीं होती कि वो आगे बढ़ के कोई बात करे, इवन सलाम भी नहीं करते, दुबक जाते। तो ये एक मैसेज होता है जो आपका हाल हुलिया दूसरों को दे रहा है, मर्दों को दे रहा है। क्या एक औरत नहीं ये चाहती कि उसका मैसेज ये दूसरों को पहुंचे, या वो ये चाहती है कि दूसरे उसकी तरफ मायल हों, या वो ये चाहती है कि हाँ मुझे देखें और मैं देखो आज कितनी हसीन लग रही हूँ, आदमियों को भी पता चले नहीं, वाकई बाज औरतों का ये चाहत होती है कि हमें देखा जाए। आज मैं सबसे बढ़ के हूं इस मजलिस में, लोग देखें। तो आपको ये बता दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मायल करने वाली हैं और मायल होने वाली हैं, मायल करने वाली और मायल होने वाली, यानी उनको भी आदमी अच्छे लगते हैं, वो बड़ा अट्रैक्टिव है, वो बड़ा हैंडसम है, वो बड़ा यंग है, उनको भी अच्छे लगते हैं और वो मायल करने वाली हैं, वो ऐसे हाल उली इसीलिए अपनाती हैं कि आदमी देखे मुझे। सो वॉट, मैं ये तो नहीं कह रही कि मैंने किसी से शादी करनी है, लेकिन बस मैं अच्छी लगना चाहती हूँ, लोग देखें मैं अच्छी लग रही हूँ। जो ये इस तरह से अट्रैक्ट करने वाली है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगी। सो वॉट आर यू गिविंग अप? जन्नत आप गिव अप कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस, कि इतनी थोड़ी देर के लिए मुझे लोग देखें और ललचाई हुई नज़रों से देखें और मेरी क्या ही बात है और मैं बाल लहराऊं और मेरे साथ हसीन ना कोई लगे, सिर्फ इतनी सी देर के इस मज़े के लिए कि मुझे मज़ा आए और मुझसे बढ़ के ना कोई हो और मैं इस महफिल की जान हूं, ये सिर्फ करने के लिए जन्नत छोड़ देना, जन्नत का सौदा कर देना, ये कहां की अक्लमंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने औरतों को जहन्नुम में ज्यादा देखा है, क्यों नहीं होंगी ज्यादा? अगर सिर्फ इसका ही सवाल हो गया कि अल्लाह ताला हमारे सामने ये आयत रख दे कि जब मैंने तुम्हें ये हुक्म दिया था जिलबाब का तो तुमने क्यों नहीं पहना, जब मैंने तुम्हें ये कहा था अपनी जीनत ना जाहिर करना तो तुमने क्यों की, तो उसका ही हम क्या जवाब देंगे? तो फिर तो ज्यादा कसरत से होंगी औरतें जहन्नुम में ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अपने बाद औरत से बड़ा मर्दों के लिए कोई फितना नहीं छोड़ा, यानी औरतें जो है ना जब अपने मकाम से हटती हैं ना, जब वो अपनी जगह छोड़ देती हैं, फितना पैदा होता है। जब औरत इस तरह से निकलती है तो आदमियों के लिए फितने का बाइस बनती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन लोगों के बारे में फरमाया कि उनके बारे में तो पूछो भी ना, उनका तो पूछो भी ना कि वो कैसे हैं। नंबर वन, जो जमात से निकल जाए, यानी इमाम की फरमा बरदारी से अपने अमीर की। नंबर टू, जो गुलाम मालिक से भाग जाए। नंबर थ्री, वो औरत जिसका शौहर उसके पास नहीं है और उसने उसे दुनिया की तफक्कुरात से भी आजाद कर दी, यानी मसलन है कहीं जॉब करने कहीं गया हुआ है, दूसरी स्टेट में गया हुआ है, कहीं और कंट्री में गया हुआ है, या चलो सुबह को जाता है वो तो रात को आता है और इसको पैसे अच्छे खुले दिए हुए, इसके बाद वो तबर्रुज करे, यानी अब अपनी जेबो जीनत जाहिर कर रही है, वो बाहर घूम रही है जेबो जीनत करके। तो इनके बारे में तो आपने फरमाया कि पूछो भी ना। अल्लाह अकबर। तो अब इन सारी बातों के बाद इसी तरह बहुत सारी अहादीस, ये तो यानी मैंने आपको बताया कि ये आयात तो कुरान के अंदर जो हैं, इसके अलावा बेशुमार अहादीस ऐसी हैं, कोई कितनी होंगी अब मेरे सामने नहीं है नंबर, लेकिन बेशुमार ऐसी अहादीस हैं जिसके अंदर ये पर्दे का हुक्म है। पर्दे का हुक्म है, उसके वो उन अहादीस को हम देखें, उनको पढ़ें, 70 से जायद अहादीस हैं जिनमें कौलन और अमलन पर्दे के अहकाम बताए गए हैं, 70 से जायद। अब इनके मुकाबले में किसी आप ऐसे स्कॉलर को सुनना शुरू कर दें जो कहे कि नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है, इसका मतलब तो ये है, उसका मतलब तो, ये बात सही है कि हाँ उस वक्त मुनाफिकीन जो थे वो ऐसा करते थे कि जो लौंडियाँ वगैरह होती थी वो तो पर्दा नहीं करती थी, तो मोमिन औरतों को, आज़ाद औरतों को ये हुक्म दिया गया आप पर्दा करें, आप इस तरह से जिलबाब लेकर बाहर निकलें। अब क्या होता था, पहचान ली जाती थी कि अच्छा ये औरत है जो कि यानी आज़ाद खानदानी इज्जत वाली है, तो उनको अब फिर कोई ना छेड़े। और दूसरी होती थी जो लौंडियाँ वगैरह होती थी, जाहिर उन्होंने काम वाम करने हैं, वो तो अब चादरें लटका लटका के घूम नहीं सकती, तो वो फिर ऐसे ही फिरती थी। तो जो ऐसे लोग होते थे मुनाफिक किस्म के, वो गुजरने वाली औरतों पर आवाज़ें कसते थे, उनके पीछे जाते थे, उनको हूटिंग करते थे, इस तरह से उनके लिए करते थे। तो अब यानी उनको ये एक मैसेज हो गया कि ये जिलबाब वाली औरत का एक मैसेज है कि मुझे ना छेड़ना, मैं खानदानी औरत हूँ। और आज तक भी वाकई ऐसा ही है कि जो जिलबाब में वो फिर यह है कि मुझे ना छेड़ना, मैं ऐसी वैसी कोई औरत नहीं हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये इतनी बात तो सही है, मगर इसके बाद जो ये कह देना नहीं जी उसी जमाने के लिए था, आज के लिए है ही नहीं, तो फिर ये आयत यहाँ पे क्या कर रही है? किसी تفسیر میں یہ دکھا دیں کہ یہ لکھا ہو کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ہے ہی نہیں، یا کوئی مولویوں نے یہ خود ہی بنا لی ہیں جی، ایجاد کر لی ہیں انہوں نے یہ چیزیں. جتنا زیادہ عورت پردے میں ہو اتنی زیادہ اس کی پروٹیکشن ہے، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے اچھا ہے. یہ ایک ایسا یعنی ٹیسٹ ہے عورت کا، جس میں کیونکہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک رکھی ہے چیز کہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں بنوں سمروں زینت کروں، یہ اس کی نیچر ہے، اور اسے منع بھی نہیں کیا گیا. آپ کریں ضرور، بلکہ کرنا اچھی بات، بعض جگہوں پہ تو ثواب کے کام ہے اس وقت شوہروں کے لیے کیا جائے، مگر اس کے علاوہ جگہوں پہ کرنا یہ ایک عورت کے لیے امتحان ہے، بہت بڑا امتحان. اور یہیں پہ ہماری خدا خوفی پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا خوف خدا ہمارے اندر ہے، کتنا واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، کتنا واقعی اللہ کے آگے جواب دینے کی ہمیں فکر ہے. کیونکہ یہ حکم اللہ کا ہے، کسی لوگوں کا نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہمارے پاس کوئی چوائس رہ جاتی ہے؟ جیسے پہلے ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لیں تو مومنوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اب آگے سے اب اس کے اندر وہ بتائیں گے کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اب ان کے پاس چوائس نہیں ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں بات. اس کے بعد یہ بھی بتائیں نا کہ یہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو اس کے بعد کیا ہمارے پاس کوئی چوائس رہ جائے گی کہ ہم فیصلے کریں اس بارے میں؟ کیا ہم یعنی جو آیت ہماری پیچھے گزری ہے آیت نمبر 36، وہاں پہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم نے مان لیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ بات، اور ہم نے سمینا و اتانا کر دیا کہ نہیں کسی مومن مرد اور کسی عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر لے تو ان کے پاس اس معاملے میں کوئی اختیار ہو. تو اب ہمارے میرے اور آپ کے پاس تو کوئی اختیار بھی نہیں. اب کوئی چاہے پوچھے تمہیں کون یہاں پہ دیکھتا ہے، اس کنٹری میں تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، اس میں کون سے ایسے منافق ہیں جو تمہیں ہوٹنگ کر رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا تو آئی ڈونٹ ہیو اینی چوائس، مجھے چوائس دی ہی نہیں گئی. مجھے یہ نہیں کہا گیا اس کے بعد آپ خود بھی سوچ لینا جب اللہ کا حکم آ جائے. اب اس میں آگے سے بجائے اس کے کہ اس کو سمینا واتانا کرنا، یہ کہہ دینا پردہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ہماری خواہشات کا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو بس اس طرح سواری پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ اتر جاتے ہیں. تو جو امہات المومنین تھی نا، آپ نے پڑھا ہے وہ سورہ نور میں، حودج میں بیٹھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی ایسے ہی گھوم نہیں رہی تھی. وہ اب آج اگر آپ کی گاڑیاں ہیں جن میں آپ بیٹھ کے کہیں چلے جاتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی حودج ہوتے تھے. وہ باقاعدہ جیسے ڈولی ٹائپ چیز ہوتی ہے، وہ کیمل کے اوپر اونٹ پہ رکھی جاتی تھی، اس کے اندر وہ بیٹھی ہوتی تھی. جب بھی تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا نا کہ یہ ہیں بھی اندر یا نہیں ہے، تو وہ اٹھا کے لے گئے، انہوں نے اوپر رکھ دیا اور وہ چل پڑے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا تھا نا پوری سٹوری، اس میں بھی آیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں وہ حضرت صفوان نے مجھے اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا، حجاب کی آیات اترنے سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اب نہیں دیکھا تھا، اب وہ اس لیے پہچان گئے کیونکہ انہوں نے پہلے دیکھا تھا، تو ان کو پتا تھا یہ حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ اس وقت ان کا پر انہوں نے فوراً اٹھ کے اپنا حجاب وغیرہ صحیح کیا. اب یہ آیات کو پھر ایسے بتا دینا کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کے اندر تو کچھ اور ہی مطلب بنا کے پیش کر دینا، یہ اللہ کے قرآن کو بدلنا ہے کہ اس کے من مانے مانے کر لینا. جو مانے صحابہ نے کیے، جو مانے آپ کے آئمہ کرام نے کیے، ان ساروں سے ہٹ کے اب آج کا کوئی کھڑا ہوتا ہے اور وہ کچھ مانا بنا لیتا ہے. کوئی کچھ ماڈرن قسم کے ایسے لوگ آ گئے ہیں جو اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس سارے اکٹھے بیٹھو اور اکٹھے اٹھو اور کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یہ کہاں سے ہے بتائیں؟ کون کہتا ہے جی کہ پردہ ہے؟ کوئی بھی پردہ نہیں، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. تو کم از کم یہ تو یہ سوچیں کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں. یہ آیات سعودی عرب کے لیے نہیں ہے، یہ آیا دنیا میں ہر جگہ کے لیے. یہ جہاں پہ بھی دنیا میں آپ رہیں گے وہاں پہ انہی آیات کے اوپر چلنا ہے، کیونکہ قرآن ہر جگہ کے لیے بھی ہے. تو اس کے بعد پھر تاویلیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے من مانے مانے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کو سمینا واتانا کہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ہم سب کو کہتے ہیں اس میں اس ایک آیت پہ ہم اگر ہمارا امتحان ہو گیا آخرت میں، تو اور تو کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہنی. یہیں پہ آ کے فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا ہمارا؟ ہر دن اور رات جتنی نظریں ہمارے اوپر اٹھیں گی ان سب کا ہمیں حساب دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اب اس کے بعد یہ جو حکم دیا ہوا ہے اب ماننے کی ضرورت نہیں ہے. حکم تو دے دیا گیا ہے لیکن کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے یہ مطلب نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم ہے یعنی اللہ نے دیکھو عورتوں تمہیں بچانے کے لیے، تمہاری پروٹیکشن کے لیے، تمہاری سیفٹی کے لیے یہ حکم نازل فرمایا. وہ کتنا رحم فرمانے والا ہے. اور جو گزر چکا، جو عورتیں اس سے پہلے جب یہ حکم نہیں پتا تھا وہ بے پرد پھرتی رہی، تو اللہ معاف فرمانے والا. سمجھ آئی بات؟ اب آگے لَإِلَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، البتہ اگر نہ باز آئے منافق. اب یہاں پہ جو کہ وہ منافقین، میں نے جیسے آپ کو بتایا وہ عورتوں کو چھیڑتے بھی تھے، تنگ بھی کرتے تھے، الٹے کام بھی کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جو سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت کی بات ہے، وہ بھی ایک منافق کی چال تھی. والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، خرابی ہے دلوں میں، یعنی مسلمانوں کی بدخواہی کرنا، مسلمانوں کے لیے آئے دن مسئلے کریٹ کرنا، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا مسلمانوں کی، یہ دلوں میں خرابی کی علامت ہے. اب یہ آج کے وقت میں بھی دیکھ لیں کہ جو یہی کام آج کے وقت میں کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو مومنوں کی کیٹیگری میں تو نہیں لا سکتے. یہ منافقت ہے، یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں، وہ ایسا کیا کرتے تھے. والمرجفون فی المدینہ، اور بری خبریں اڑانے والے مدینہ میں. مدینہ میں بری خبریں کیا اڑاتے تھے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کو بھیجتے تھے مہمات کے پر، کہتے تھے وہ تو مارے گئے ہیں سارے، انہوں نے تو بچ کے آنا ہی نہیں ہے. اور پھر اور کیا بری افواہیں پھیلاتے تھے، فلاں قبیلہ تو اب حملہ کرنے والا ہے، اب نہیں کچھ بچنا، جتنا کھانا پینا ہے کھا لو، اب بچو گے نہیں تم. اب اس سے کیا ہوتا تھا؟ اتنی ایک سکیئر ہوتی تھی، ایک خوف، ایک سنسنی، لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اور یہ آج بھی لوگوں کے طریقے ہیں. یعنی سوچتی ہوں کہ دیکھو سبحان اللہ، اس وقت اگر منافق تھے نا تو آج منافق نہ صحیح ہم کہیں، لیکن منافقوں والے کام کرنے والے ضرور آج بھی موجود ہیں. ایسی ایسی سنسنی لوگ پھیلاتے ہیں. او ہو، اگر آپ کوئی کلاس لیں گے قرآن کی، آپ تو نظروں میں آ جائیں گے. آپ تو ایسے ہو جائے گا بھائی فون ٹیپ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، اور اتنے اتنے واٹس ایپ پہ میسج، بس ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے، آج سے شروع ہو گئی، اب کچھ نہ بھیجنا، اب ایسے نہ کرنا. کیوں سنسنیاں پھیلاتے ہو؟ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ایسی خوف زدہ کرنے والی خبریں لوگوں میں پھیلائیں تاکہ لوگ بھی سہم جائیں، لوگ ڈر جائیں، جہاں بیٹھیں گے بس اب سے تو ایسا ہونے لگا ہے، امیگریشن کا یہ لا آ رہا ہے، اب تو کسی نے نہیں بچنا، اب تو ہمارے اوپر یہ مصیبت آ جائے گی. وہ کسی نے بڑا اچھی ایک بات بھیجی تھی کہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہ رہو، کیونکہ وہ ہر سلوشن میں بھی پرابلم نکال لیتے ہیں. واقعی وہ منافقین ایسے ہی تھے کہ وہ یعنی حالات اگر صحیح بھی جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ الٹی ایسی باتیں کرنی ہیں جس سے کہ لوگوں میں خوف پیدا رہے، لوگ پینک رہیں، لوگ پریشان ہو جائیں. کہیں ہماری تو نیچر ایسی نہیں ہے، ہمیں ذرا سی کوئی بات پتا چلے وہ فون اٹھا کے اس کو بتا رہے ہیں، او تمہیں پتا ہے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں پکڑا گیا، فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا. کیوں؟ کہ تاکہ ہم چاہتے ہیں لوگوں میں خوف پیدا ہو، سنسنی پیدا ہو، اس سے ہمیں مزہ آتا ہے، یہ ہمارے لیے تھرل کی باتیں. اس طرح کے عادات کو چھوڑنا ہے، یہ منافقوں کی باتیں تھیں، ہیجان لگیں، افواہیں اڑانا. یہ پبلک کے اندر نا چین سے تو لوگ نہ کبھی بیٹھیں، بس لوگوں کو ہر ٹائم کوئی پریشانی رہے. دیکھیں نا یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا معاشرے میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، ان سے دور رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے، یہ آپ کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے. تو فرمایا یہ جو تین طرح کے لوگ ہیں، منافق ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو افواہیں پھیلاتے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تجھ کو ان کے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، ان پہ مسلط کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دیں گے کہ وہ ان کے خلاف محاذ آرائی کریں، ان کے خلاف کوئی جنگ کریں. ثم لا یجاورونک فیہا، پھر نہیں وہ آس پاس آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے ہمسائیگی میں رہ سکیں گے اس میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے، یعنی پھر या आपकी हमसायगी में नहीं रह सकेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मदीना छोड़ना पड़ेगा इनको, इनको जिला वतन कर दिया जाएगा, इनको यहां से भगा दिया जाएगा। मुनाफिकीन के लिए इसमें एक वार्निंग दी गई कि तुम लोगों को खौफजदा करते हो ना, कि लोग सहमे रहे लोगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए वार्निंग है। ऐसा हुआ तो नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको इस तरह से इनके साथ किया हो, और आगे भी जो बात आ रही है, लेकिन इनके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी कि अगर तुम बाज ना आए अपनी हरकतों से तो ये होगा तुम्हारे साथ। फिर आगे भी इन्हीं की मलऊनीन, लानत किए गए, अइना मा सुकिफू उखिज़ू व कुतिलू तकतीला, जहां कहीं वो पाए जाएं, पकड़े जाएं और कत्ल किए जाएं, कत्ल किया जाना, यानी ये इनके लिए हुक्म दिया गया, ये खौफनाक किस्म की धमकी इनके लिए। ऐसे लोगों के साथ ये होना चाहिए फिर कि इनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, खत्म बात। अब इसके बारे में दो आ रहा है मुफसरीन की, एक राय है कि इनके खिलाफ ये बद्दुआ है, सख्त वईद है कि अल्लाह के हाँ इनका कितना बुरा मकाम है, ये बताया गया कि ये लानत ज़दा है और ये इनके साथ होना चाहिए। और नंबर टू, ये इनकी सजा है कि इनको ये जो ये काम कर रहे हैं इसकी इतनी बड़ी सजा दुनिया में है तो आखरत में इनका क्या मकाम होगा। ये अल्लाह का गजब शो कर रही आयत असल में, कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे हमले करते हैं उनके घर वालों तक को नहीं छोड़ते, और अजाब में तो आपको पता है ना उन्होंने क्या किया, तो हमारे तो घर खुले पड़े हुए हैं, हमें तो जाने दें, हमारे तो घर गैर महफूज हैं, और फिर सनसनियां खामखा फैला देते, बस आ गए हैं वो, अब तो खत्म, अब तो ये होगा, अब वो होगा, और ये कहाँ की बातें कर रहे हैं, ये रूम और फारिस की फतह की बातें कर रहे हैं, खाने को कुछ है नहीं, और चलो चलो वापस चलो लोगो, अब छोड़ो इनको, अब वापस चलो जो हमारा दीन था उसी की तरफ वापस चलो, और वही उसी यसरब की तरफ वापस चलो। इस तरह की बातें करते थे कि जिससे लोगों का मोरल डाउन कर देना, लोगों को बस डिसअपॉइंट कर देना, मायूस कर देना। तो इसमें यहाँ पे हमें इन सारी बातों का पता चला, ये अफवाहें उड़ाने का भी, मैंने दिलों की बीमारी का भी बता दिया कि औरतों के साथ छेड़छाड़ करते थे, ये भी अब देखें ये भी चीज आज भी मौजूद है, अफवाहें फैलाना भी आज भी मौजूद है। हाँ, मुनाफिकत का हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते फलां मुनाफिक है या ये है, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर ये जो दो काम है ये आज भी हो रहे हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है वही बात है कि आज भी वही कर रहे हैं जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आप सबसे ज्यादा ये चीजें देखें जो हमारे मुल्क में मुसलमान लोग हैं, वो आवाजें भी कस रहे हैं, वो पीछे गाने गाते फिर रहे हैं, वो कभी कुछ कर रहे हैं, कभी हुटिंग कर रहे हैं, कभी पीछे पीछे चल पड़ते हैं, इस तरह की चीजें आज भी मौजूद हैं। नहीं, ये तो किन के कारनामे थे उस जमाने में। अब इन लोगों का तो ये इलाज किया गया, साथ साथ औरतों को कहा गया कि तुम लोग भी जिलबाब लो ताकि इन लोगों को मौका ना मिले। अब हजरत जैनब के निकाह के मौके पर इन्होंने क्या किया था, वो भी मुनाफिकीन थे, दिन उनके दिलों में बीमारी थी, इन्होंने कितना प्रोपोगेंडा किया, इतना किया कि खालिस जो मुसलमान थे ना, जो यानी हर एक मुसलमान का एक जितना लेवल नहीं होता ईमान का, तो वो जो थोड़ा वीक ईमान वाले होते हैं उनको अपने साथ मिला लेते थे, वो मतलब अंदर से दिल से मुनाफिक नहीं थे, यानी ऐसे कोई फायदे के लिए नहीं मुसलमानों के साथ लगे हुए थे, लेकिन कमजोर ईमान वाले थे, अब वो भी इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगते थे। तो इनकी जो ये हरकतें थी ना, ये दूसरों को भी मुतासिर करती थी, सारे माशरे में ये एक खराबी का बायस थे। तो इनका ये अंजाम बताया गया कि ये नहीं तुम बाज आए ना तो तुम देखना यहां से जिला वतन भी किए जाओगे, जहां पाए जाओगे वहां कत्ल किए जाओगे, यानी अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अगर तुम बाज ना आए। तो ये इसलिए ताकि इन लोगों को एक वार्निंग दे के छोड़ा जाए, ये अपनी इसलाह कर लें, बाज आ जाएं, अगर पहले नहीं डरते थे तो अभी डर जाएं। और वाकई इसके बाद काफी हद तक इनका जोर भी टूट गया था, काफी हद तक इनकी ये चीजें खत्म हो गई थी। ये सुन्नत अल्लाह है, अल्लाह का तरीका है, सुन्नत अल्लाह फिल लदीना खलौ मिन कब्ल, अल्लाह का तरीका ये उन लोगों के मामले में भी जो गुजर चुके इससे पहले, यानी पहले भी जो अंबिया आए हैं उनके साथ भी कई मुनाफिकीन लग जाते थे, तो उनके साथ भी अल्लाह ताला का यही तरीका कि ऐसे लोगों के साथ ये होना चाहिए जो मुसलमानों के सच्चे मोमिनों के साथ ऐसा करते हैं, उनकी औरतों के साथ इस तरह से करें। ये जेब नहीं देता किसी ईमान वाले को कि वो ईमान वाली औरत के साथ ही इस तरह से की हरकतें करे, और ना ही किसी ईमान वाले को ये जेब देता है कि वो अफवाहें फैलाए जिससे लोग सहम जाएं। یہ پھر ایمان والا نہیں ہو سکتا، پھر ان کے دلوں میں ضرور بیماری ہے، منافقت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کو تم بدلتے بھی نہیں دیکھو گے، چینج ہوتے بھی نہیں دیکھو گے. پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی تھا، ان کی قوموں میں جو منافق آئے ان کے ساتھ یہی طریقہ تھا، اب بھی یہی طریقہ. ایسا نہیں ہوگا کہ اب اس امت میں جو منافقین ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا کیا جائے. اب یہ انسان سوچتا ہے نا کہ ہم بھی وہی کام اگر کریں گے جو پچھلی قوموں نے کیے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو امت محمد ہیں، ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، اللہ غفور رحیم ہے اگر ہم کہیں گے ہم امت ہی ہیں، تیرے نبی کے آخری نبی کے امت ہی ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اللہ کا طریقہ بدلا نہیں کرتا، یہ اللہ کی سنت ہے. جو پچھلوں کے ساتھ ہوا اسی طرح اگلوں کے ساتھ بھی ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو بہت چہیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہی کام کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پچھلوں کو تو اس کے اوپر عذاب آ گئے. یہ دنیا میں نہیں تو اس بندے کو انڈیویجولی دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ملے گا پھر، اگر وہی کام کیے جو پچھلی امتوں نے کیے تھے. یسألک الناس عن الساعة، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے گھڑی کے بارے میں. کون سی گھڑی؟ قیامت کی. قیامت کا ایک نام ہے الساعة. کیوں؟ ساعة کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، پل. اس لیے کہ جب قیامت آنی ہے نا تو ایک پل بھی نہیں لگنا، اتنی اچانک آ جانی ہے. ایسے مطلب ہے جیسے آپ یہ سوچیں کہ ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی وارننگ سائنس پہلے آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اچھا آج قیامت آنی ہے تو آج صبح سے بہت اندھیرا چھا گیا اور صبح سے کوئی زلزلے شروع ہو گئے، ایسے کچھ نہیں ہوگا. بڑا آرام سے کمفرٹیبلی سب چل رہا ہوگا، بازار کھلے ہوں گے، جابس کھلی ہوں گی، لوگ اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، بزنسز کھلے ہوں گے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور کوئی کپڑا پھیلائے ہوئے اور دکھا رہا ہے لوگوں کو، کوئی اپنے حوض صحیح کر رہا ہے، یعنی نارمل کے اپنے کام کر رہے ہیں لوگ. اتنی اچانک ایک دم سے آ جائے گی قیامت، ایک گھڑی بھی نہیں لگنی اس میں، اس لیے اس کا نام الساعة ہے. اب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں الساعة کے بارے میں، کون پوچھتے تھے؟ زیادہ تر تو لوگ پوچھتے تھے جو کافر تھے، جو اس طرح سے انکار کرنے والے تھے، وہی انہوں نے ایک مشغلہ سا بنا لیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات اتنے زیادہ بیان کرتے تھے، اتنے زیادہ بیان کرتے تھے، اتنا اس سے ڈراتے تھے کہ یہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے نا، ان کے پاس ایک یعنی ایک جوک سا ہاتھ لگ گیا تھا، اچھا بتاؤ نا پھر کب آنی ہے وہ جس کے بارے میں تم کہتے، اتنا ڈراتے رہتے، کب آنی، کب ہے وہ، یعنی اس طرح سے. یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی بڑی فکر تھی، ہائے ہم قیامت آئی تو کیا ہوگا، ایسا نہیں تھا، بلکہ ویسے ہی فن سیک، مذاق اڑانے کے لیے، انکار کرنے کے لیے. جس نے ایک صحابی نے واقعی سیریسلی سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ان صحابی کو یہ دیا تھا کہ تم بتاؤ تمہاری تیاری کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ یعنی تمہاری تیاری کیا، یعنی فکر تمہیں اس چیز کی نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب آنی ہے، فکر اس چیز کی ہونی چاہیے کہ جس دن قیامت آ گئی، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوا، اس دن میرا کیا بنے گا، اس دن اللہ مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا، اس دن کی میری حالت کیا ہوگی، اس کے لیے میں نے کیا بنایا ہے اپنے لیے، میرے پاس کیا تیاری ہے. وہ جب بھی آئے تم اپنی تیاری کی فکر کرو. اب بعض دفعہ ہم قیامت کی بعض نشانیاں دیکھ کے سوچتے ہیں نا، ابھی تو نہیں آنی، ابھی تو کافی وقت ہے، ابھی تو یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، فلاں نہیں آئے گا، تو اس کی ہمیں نہیں فکر ہونی چاہیے کہ بھئی یہ تو نشانیاں نہیں پوری ہوئی یا کیا ہے، اور ہم بے خوف ہو جائیں کہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے، کیونکہ الساعة کا مطلب موت بھی ہے، کیونکہ موت انسان کی قیامت ہی ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی قیامت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کی موت آ جاتی ہے، اور وہ موت بھی جو ہے وہ کیسے آنی ہے، وہ بھی تو کسی نے بتا کے نہیں آنا کہ آج آ رہی ہے، کل آ رہی ہے، شام کو آ جائے گی. اللہ اکبر، موت بھی اچانک آ جانی ہے، تو اس کی بھی یہ نہ سوچو کہ میں بڑھاپے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ابھی تو میرے پاس بہت ٹائم ہے، اس کی نشانی بھی نہیں پوری ہوئی، کیونکہ موت تو آتی بڑھاپے میں، جب میں 70-80 سال کی جاؤں گی تب مجھے سر فکر ہوگی، تب میں صحیح ہو جاؤں گی. تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ कितनी वो अचानक आ जाए, उसने बता के नहीं आना, उसकी कोई ऐसी निशानियां नहीं जो पूरी होनी है तो फिर आएगी, वो कभी भी आ सकती है। फिर तौबा का तुम्हें चांस मिले या ना मिले ये नहीं पता। शैतान सिखाता है अभी ना तौबा करना, अभी तौबा ना कहीं कर बैठना, अभी बहुत टाइम पड़ा, ये हिजाब वगैरह जिलबाब उस वक्त ले लेना जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर ले लेंगे, अभी जल्दी क्या है। यही बात शैतान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को सिखाई थी, जो नबी के बेटे थे, शैतान ने उनको भी नहीं छोड़ा था। और हमारे जैसे क्या हैं लोग, हमें भी आगे कहता बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी हो जाएगा, वाकई जो काम आज ना किया ना तो कल के ऊपर अगर डाल दिया तो होना ही नहीं। कितनी दफा ही आयतें पढ़ चुके हैं फिर भी हम टसे मस नहीं होते, क्यों? इसलिए हम कल पे डाल देते हैं, कर ही लेंगे ना, हमने कब कहा नहीं करेंगे, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो गे कभी भी नहीं होना, जिसने आज ना किया कभी नहीं होगा। आज जिस पोजीशन में भी हो उसमें भी कर लो, इसलिए कि पता नहीं कल आएगा कि नहीं आएगा, वो कल नहीं आता। और जब हम ये सोचते ना नहीं बस ये काम हो जाए उसके बाद मैं करूंगी, शादी हो जाए उसके बाद करूंगी, ये हो जाए उसके बाद करूंगी, फलां हो जाए उसके बाद, तो ये सोचें कि आपको क्या पता कि उसके बाद तक कि आपको पास जिंदगी हो या नहीं हो, हो सकता है कि उसी अमल के दौरान मौत आ जाए, उसी टाइम पे मौत आ जाए जब हम सोच रहे हैं इसके बाद करूंगी, उसी के अंदर मौत आ गई तो क्या होगा, जिस हाल में मरेंगे ना उसी हाल में उठेंगे। अगर बुराई करते हुए अल्लाह की नाफरमानी के दौरान मर गए तो उसी हाल में क्यामत के दिन उठेंगे। आज तो इतना बदनामी का डर लगता है कि हाय अल्लाह फलाने को ना पता चल जाए, उसको ना पता चल जाए, उस वक्त क्या होगा जब उसी बुराई करते हुए उठोगे तो फिर उसके उस वक्त जब सारी मखलूक देख रही होगी उस वक्त ना बदनामी होगी। और जो कह देते तौबा कर लेंगे, आपको क्या पता कल हमारे ईमान की क्या हालत रहती है, कल हमें तौफीक तौबा की मिलती भी है कि नहीं मिलती, हमें ये या हम आगे और बढ़ जाते हैं या हमें वाकई पछतावा होता है इस पे। आज तो हो रहा है, आज तो लग रहा है कि ये गलत है, मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन तौबा आज नहीं करूंगी वो कल करूंगी, कल क्या पता ये चीज मुझे गलत ही ना लगे, कल हो सकता है इसके ऊपर मैं इतनी ढीठ हो जाऊं कि उसके बाद मुझे लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं और मैं नडर हो जाऊं। तौबा की तौफीक भी अल्लाह ताला छीन लेता होता है। और जो ये सोचे कि मैं मौत के वक्त तौबा कर लूंगा, मैं उस वक्त तौबा कर लूंगा, एक तो मौत का वक्त नहीं पता वो तो सबको, लेकिन दूसरे एक बात याद रखिए, फिरौन ने भी मरते वक्त तौबा की थी तो कबूल हो गई उसकी तौबा। अल्लाह ताला ने आगे क्या फरमाया, आल आन, अब जाके, अब तुझे तौबा याद आई है, जब बिल्कुल जान निकलने लगी है हलक में पहुंच गई तो तब हम तौबा कर लेते हैं। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसी तौबा नहीं कबूल होती, जब इंसान उसके पास मौत आ जाए तो उस वक्त वो कहे अब मैं तौबा कर रहा हूं, ऐसी तौबा नहीं कबूल होती। आयत नंबर नहीं मुझे अब याद, मगर आप शुरू में देख लीजिएगा चौथे बारे में, तो ये नहीं तौबा होती कि इंसान मौत के वक्त कहे। तो अगर कयामत नहीं भी आती हमारी जिंदगियों में तो मौत तो आनी है ना, मौत की क्या तैयारी है, मौत के साथ ही कयामत इसलिए शुरू हो जाती। ये जो हदीस है वो ये इसीलिए तो बताया गया कि कैसे कयामत शुरू हो जाएगी, क्योंकि हिसाब किताब शुरू हो जाना, ये कब्र में जाते ही तो मुनकर नकीर आ जाएंगे, उनके सवाल जवाब शुरू कर देने, जो जो इंसान के ऊपर जो हालात है जजा या सजा के वो भी शुरू हो जाएंगे, जजा है तो वो भी मिलनी शुरू हो जाएगी, सजा है तो वो भी मिलनी, तो कयामत तो शुरू हो गई ना। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया कयामत का मामला तो पलक झपकने की तरह या उससे भी ज्यादा करीब, यानी इतना करीब समझो इसको, इतना करीब, चाहे वो मौत की शक्ल में है या बड़ी कयामत की शक्ल में, क्योंकि ये छोटी कयामत तो ये मौत है ही। और अगर कोई सोचता है कि नहीं पता नहीं हो सकता हम बीमार हों, फिर हमें पता चल जाए, फिर डॉक्टर जवाब दे दें, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारी मौत आ रही तो फिर हम तौबा कर लेंगे, याद रखें उस वक्त भी हमें नहीं पता कि अमल की तौफीक मिले या नहीं। कुछ लोगों को ऐसों को भी देखा है कि बीमारी की हालत में कोमा में चले जाते हैं, साल साल कोमा में पड़े हुए हैं, अमल तो बंद हो गया ना, तौबा का दरवाजा तो बंद हो गया, अब चाहे उनकी सांसें चल रही हैं, जिंदगी चल रही है, उनकी डेट कोई 2 साल बाद की है, कोई 3 साल बाद की, वो कोमा में ही पड़े हुए हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है उनके लिए। या कोई नेकी मैंने करनी है तो फिर मैं अब उस वक्त कर लूंगी, तो उस वक्त तो हिम्मत ही नहीं रहती, बिस्तर में अस्पताल के पड़े होते हैं, क्या हिम्मत होती है। अल्लाह अकबर। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, आप कह दीजिए नबी कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। यानी कोई शायद सोचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, तो हो सकता है कि आपको पता हो कि जो है क़यामत कब आनी है, तो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। किसी कोई एक आलिम थे, कोई टीवी पे बता रहे थे, दर्स दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसी को नहीं इल्म है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म था, लेकिन आपने बताया नहीं इसलिए क्योंकि मतलब वो अल्लाह की तरफ से इल्म था, आपको पर्सनल इल्म नहीं था इसलिए। हालांकि कुरान साफ कहता है कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। और वो जो हदीस जिब्रील है जिसमें जिब्राइल अलैहि सलाम आए और पूछा कि क़यामत कब आनी है, तो आपने फरमाया जितना पूछने वाले को इल्म है उतना ही बताने वाले को इल्म है, यानी कि जैसे तुम्हें नहीं पता इसी तरह मुझे भी नहीं पता। तो सारी हदीसें सारा कुरान एक तरफ करके और ये जवाब दे दिया कि वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म, यानी कैसी बात है, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल, आप कह दीजिए इसका इल्म अल्लाह के पास है, यानी मेरे पास नहीं है, मेरे से ना पूछोगे कब आनी है। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम क़यामत के आने से इतना डरते थे, इतना डरते थे कि कोई आंधी तूफान आ जाता, कोई ऐसी आसमानी आफत आती, तो वो कहते थे कि पता नहीं क़यामत आ गई है, तेज आंधी भी चलती थी तो वो डर जाते थे शायद क़यामत तो नहीं आ गई, इतनी क़यामत उनके जहनों में छाई हुई थी, इतना इसका ख्याल था उनके अंदर। हमें तो कितनी कितनी चीजें हो जाती हैं, हमें ख्याल ही नहीं आता कि क़यामत तो नहीं आ गई। वमा युदरी का लाल सात तकुनु करीबा, और क्या चीज बताए तुझको शायद के क़यामत करीब आ लगी हो। अल्लाहु अकबर, तुझे क्या चीज ये बताए, हो सकता है वो करीब ही हो। और अगर इसको मौत की शक्ल में लिया जाए तो तुम्हें क्या पता, वो करीब ही खड़ी हो, शायद मौत करीब ही खड़ी हुई है, यहीं कहीं है, आने ही वाली है। अगली सूरतों में एक में आता है ना कि वो कहते हैं कि वो दूर है और हम कहते हैं करीब है, यानी इंसान कहते हैं वो बड़ी दूर है और अल्लाह फरमाता है करीब है। क्या चीज बताए तुझको, यानी ये भी एक मुतवज्जो करने के लिए इस तरह से कलाम होता है ना, वमा युदरी का, क्या चीज तुझे बताए, कैसे समझाया जाए तुम्हें कि शायद कि वो करीब ही है। अल्लाह ताला ने वमा अदराक भी फरमाया, अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराक अलकारिया, तो कारिया खड़खड़ा देने वाली, खड़खड़ा, जब वो खड़खड़ा देगी जैसे कोई चीज शेक होने लगती ना, खड़खड़ खड़खड़ होने, वो खड़खड़ा देने वाली, तुम्हें क्या पता वो क्या है खड़खड़ा देने वाली। इसी तरह वमा युदरीका है, माना एक ही है, लेकिन जब जब वमा अदराका आया ना तो अल्लाह ताला ने आगे कोई जवाब दिया उसका, और जब वमा युदरीका आया तो कोई जवाब नहीं है इसका, बस ये बता दिया कि क्या चीज तुझे पता है। कितनी ये आयात हमारे लिए आंखें खोल देने वाली है अगर इन पे तवज्जो करें।